हेलो दोस्तों, मैं अदिति आज फिर से एक और नई स्टोरी के साथ मैं आपसे मिलने आई हूँ। ज़िंदगी में हम कभी कभी कुछ बेहतरीन पल गुजारते हैं और उनकी यादें हमेशा हमारे जहन में रहती है। ऐसा ही कुछ भानु आथिया जी के साथ हुआ। आप लोगों के लिए ये नाम शायद नया भी होगा कि कौन थी ये लेडी, मैं आपको बताऊंगी बाद में इस बारे में। भानु आथिया जी को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड से नवाजा गया था इन द ईयर 1983। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो फर्स्ट इंडियन थी जिनको ये अवार्ड से नवाजा गया था। ऑब्वियसली हर किसी की तरह उन्होंने भी इस चीज़ का श्रेय अपने माता और अपने पिता को दिया। भानु जी के पिता अन्ना साहेब राजोपाध्याय एक बहुत ही पैशनेट आर्टिस्ट रहे हैं और इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो उनसे, उनकी बेटी अपने फादर से काफ़ी इंस्पायर्ड होके बाहर आई है। उनके फादर एक बहुत अच्छे पेंटर और फोटोग्राफर थे और बचपन से ही उनकी ये बेटी भानु जी उनके साथ, अपने फादर के साथ उनके पेंटिंग में या उनके फोटोग्राफी में उनकी हेल्प किया करती थी बहुत छोटी उसी उम्र से। और ये बात उनके फादर ने नोटिस किया और जब वो 8 साल की थी तभी उन्होंने उनके लिए एक क्राफ्ट टीचर अरेंज किया जो उनको क्राफ्टिंग का काम सिखाए। यही नहीं, उनको वेस्टर्न सिनेमा से भी इंट्रोड्यूस कराया जहाँ पे चार्ली चैपलिन जैसे महान एक्टर को भी वो जानने लगी, उनको वो पहचानने लगी। बट 9 साल की उम्र में ही उनके सिर से उनका पिता का साया चला गया। 9 साल की बच्ची जिनके फादर नहीं रहे और उनकी मदर उनके साथ, उनके और 7 भाई और बहन जिनको उनको ब्रॉटअप करना था, जिनको पढ़ाना था, जिनको लिखाना था, जिनको आगे बढ़ना था, बढ़ाना था, पर उनकी मदर का एक जो क्वालिटी था वो ये था कि वो एक बहुत ही डिसिप्लिन लेडी थी, बहुत ही प्रिंसिपल वाली लेडी थी। और उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि उनके बच्चे भी उसी प्रिंसिपल, उसी डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करें जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रखे थे। वो हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए और अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए एंकरेज करती थी। किसी ने इन भानु जी को बोला कि उनको फर्दर स्टडीज़ के लिए सर जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स में अप्लाई करना चाहिए और उन्होंने किया भी। एक 17 साल की लड़की जिसको सर जे कॉलेज में एडमिशन मिल गया और मुंबई जैसे बड़े शहर में वो आ गई। शुरुआत में उनको डर भी लगा कि कैसे इस बड़े से शहर में वो सरवाइव करेगी, पर उनकी मदर की आंखों में अपने लिए कॉन्फिडेंस देख के उनको वो यकीन हो गया कि अगर मेरी माँ को मुझ पे कॉन्फिडेंट है तो फिर मैं अपने आप पे कॉन्फिडेंस क्यों गवाऊँ, मुझे भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। और इसी तरह उन्होंने काम ढूंढने की शुरुआत की। शुरुआत में कुछ उतना बड़ा काम नहीं मिला, एक छोटा सा इल्यूस्ट्रेटर का जॉब मिला फॉर द मैगजीन। बट वो काम वो अपनी स्टडीज़ के साथ करती थी और बावजूद अपनी पढ़ाई और अपने काम के साथ उन्होंने अपनी स्टडीज़ में गोल्ड मेडल के साथ ग्रेजुएशन किया कंप्लीट। वो यहाँ नहीं रुकी, वो मेंबर बनी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की और उसके बाद मिस कामिनी कौशल ने उनको अपने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने का काम दिया, जिसके लिए उन्होंने उनको कमीशंस भी दिए। और यह उनकी शुरुआत हुई एज ए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। उसके बाद फिल्म लाइक आस और शहंशाह, उनकी फर्स्ट एज ए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर मूवीज़ रही। इतना ही नहीं, उनके काम को देखते हुए नरगिस जी ने उनको आरके स्टूडियो में इंट्रोड्यूस कराया। तब श्री 420 की ऑलरेडी शूटिंग चालू हो चुकी थी और उन लोगों को उस वक्त श्री 420 की जो वैम्प है नादिरा, उनके लिए अच्छी सी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की ज़रूरत थी। और उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब की और नादिरा के लिए सबसे बेस्ट आउटफिट एज अ वैम्प उन्होंने क्रिएट किए। और उनका काम राज कपूर जी को इतना पसंद आया कि उनके साथ उन्होंने और भी कई सारी मूवीज़ की एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। और यही नहीं, उनका काम की सराहना गुरुदत्त साहब जैसे बड़े डायरेक्टर्स ने भी किया और उन्होंने अपनी फिल्म जैसे कि CID, प्यासा, कागज़ के फूल, उन सब में भी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का काम भानु जी को दिया। पर एक चीज़ जो उनको शायद थोड़ी खटक रही थी वो ये थी कि इंडस्ट्री में उनको फैशन डिज़ाइनर कोई नहीं समझता था। हर कोई उनको एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, एक टेक्नीशियन, एक क्राफ्टमैन की इमेज में वो बंध चुकी थी। और उनको ना अपनी वो ये इमेज चेंज करनी थी। उसके लिए उनको ऐसा कुछ काम करना था जो उनको सेल्फ सेटिस्फैक्शन दे। और उनको वो अपॉर्चुनिटी मिली, उनको वो अपॉर्चुनिटी सिमी गरेवाल जी से मिली। गांधी जी पे एक बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मूवी बनाने का असाइनमेंट शुरू किया था। और उस ज़माने में, उस दौर में लोगों के पास फ़ोन्स भी नहीं हुआ करते थे, तो सिमी जी भानु जी के शॉप पे गई और उनको बोला कि ऐसे गांधी जी पे एक मूवी बन रही है, क्या तुम करने में इंटरेस्टेड हो? और भानु जी, जो कि हमेशा से गांधी जी से इंस्पायर्ड रही है, इवन प्री इंडिपेंडेंस इरा में भी, उन्होंने इमीडिएटली बोला कि हाँ, मैं इस बात के लिए ट्राई ज़रूर करूँगी। तो सिमी जी ने बोला ठीक है, अच्छे से तैयार होके एक बायोडाटा बना के सो एंड सो जगह पे इंटरव्यू के लिए आ जाओ। वहाँ पे इंटरव्यूज़ चल रहे हैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के, फैशन डिज़ाइनर के। इंटरव्यू कौन ले रहा है? इंटरव्यू सर एटनबर्ग ले रहे हैं। उनके साथ उनकी मीटिंग फिक्स हुई। उनका इंटरव्यू 15 मिनट तक चला और 15 मिनट के बाद उन्होंने अनाउंस किया दैट ही फाउंड हिज डिज़ाइनर। 25 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बावजूद उनको इतना बड़ा ब्रेक नहीं मिला था जितना उनको ये गांधी जी की फिल्म करने पे मिला। वो काफ़ी एक्साइटेड थी एज वेल एज काफ़ी नर्वस भी थी कि वो कैसे इतना बड़ा काम अपने बेस्ट दे पाएगी। उसके लिए उन्होंने गांधी जी जहाँ जहाँ ट्रैवल किए थे, हर उस जगह पे वो गई जहाँ से उनको फ्रीडम मूवमेंट का आइडिया आया, जहाँ से उन्होंने एक चेंजेस लाने शुरू कर दिए। यहीं पे भानु जी नहीं रुकी, उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ से लेके हिंदुस्तान के हर म्यूज़ियम में घंटों की रिसर्च की सिर्फ गांधी जी और उनकी लाइफ से रिलेटेड या उनकी लाइफ में आने वाले लोगों से रिलेटेड। और उस तरह उन्होंने गांधी जी के और बाकी सब के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने शुरू कर दिए। फिल्म ख़त्म हुई, सब ने उनके काम को नवाजा और किसी ने उनसे पूछा कि पूरी फिल्म में पर्सनली उनको किसका आउटफिट पसंद आया? तो उन्होंने जवाब दिया कि पर्सनली उनको नेहरू जी का आउटफिट पसंद आया, क्योंकि वो जो आउटफिट उन्होंने नेहरू जी के लिए पिक्चर में बनाया था, नेहरू जी एक्चुअल में वही आउटफिट वैसे उसी तरह से पहना करते थे। और अल्टीमेटली उनकी जो मेहनत थी वो रंग लाई। प्रोड्यूसर फिलिस डेल्टन ने उनके काम को नवाजा और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें तो लगा कि शायद फिनिश गुड्स और फिनिश क्लोथ्स, रेडीमेड क्लोथ्स आप लेके आए होंगे। हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि किसी डिज़ाइनर ने इतने अच्छे तरीके से कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए हैं। और वो चीज़ उनके लिए किसी अवार्ड से कम नहीं थी। यही नहीं, उन्होंने गुलजार साहब की लेकिन फिल्म के लिए भी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए और उनको नेशनल अवार्ड मिला इन द ईयर 1990। एक और चीज़, 2001 की साल में जब लगान मूवी की शूटिंग शुरू हुई तो वो बतौर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर अपॉइंट की गई। और उस फिल्म के लिए भी 2004 में उनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हाथों नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। 2009 में उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय फिल्म फेयर मिला। बट अगर किसी ने उनको पूछा कि आपको सबसे बेहतरीन, सबसे ग्रेसफुल ऐसा कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस है जिनके लिए आप अपने दिल से कॉस्ट्यूम बनाना या डिज़ाइन करना पसंद करो, तो उन्होंने वहीदा रहमान जी का नाम लिया कि जो ग्रेस वहीदा रहमान जी में है वो शायद वो और किसी में नहीं देख पा रही है। और शायद सही भी है, वो आज भी इतनी ही ग्रेसफुल लगती है। उनके एक इंटरव्यू में उनको किसी ने पूछा गया कि आप अपना दी बेस्ट कैसे दे पाते हो हर बार, तो उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि दो चीज़ें हैं जो आपका दी बेस्ट देने में आपको हेल्प करती है। एक, जिस जो आप काम कर रहे हो उसको आप 100% प्यार दो, उसमें डूब जाओ, और दूसरा एक जुनून, एक पागलपन। चाहे लोग पैशन को शायद पागलपन ही कहते हैं, बट वो पागलपन ज़रूरी है आप में आपका सबसे बेस्ट लाने के लिए। और आप वो कर सकते हो अगर आप में वो पागलपन है। इट इज़ नॉट एट ऑल एन ईजी टास्क टू डिज़ाइन कॉस्ट्यूम फॉर एक्टर और एक्ट्रेसेस, बिकॉज अगर आप एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हो तो आपके कॉस्ट्यूम्स एक्टर एक्ट्रेसेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं उनकी खुद की आइडेंटिटी भूल के अपने कैरेक्टर में घुसने के लिए। और ये चीज़ ऐसे ही नहीं आती। एक अच्छा कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बनना है तो आप में कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और उन क्वालिटीज़ में से एक है ऑर्गेनाइजेशंस की भी। आपका माइंड एकदम आर्टिस्टिक होना चाहिए। अल्सो आप वेरी डिसिप्लिन पर्सनालिटी से बिलोंग करने चाहिए। आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। आप किसी भी इंसान को देख के उसके कैरेक्टर को समझ के उसको इमेजिन कर सकते हो कि इस पे कौन सी चीज़ सबसे बेस्ट लगेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आवर्स एंड आवर्स ऑफ रिसर्च। मेहनत के बिना, रिसर्च के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। सो रिसर्च इज मस्ट एंड इट इज़ एक्चुअली द बेस। हम में से बहुत कम लोग शायद जानते हैं कि भानु आथिया जी कुछ दिनों पहले ही इस दुनिया से चल बसी, दैट इज़ 15 अक्टूबर 2020। इनके लिए इनकी ज़िंदगी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। और आज इनकी स्टोरी बताते बताते मुझे भी लगता है कि यार लीव लाइफ किंग साइज, मतलब कुछ न होते हुए बहुत कुछ पा लेना, जबकि आपको पता है कि आप सब कुछ पाने के बाद भी सब छोड़ के यहीं पे जाने वाले हो। बस रह जाओगे तो लोगों की यादों में रहोगे। अब अच्छे तरीके से रहना है या बुरे तरीके से, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, बट रहना तो आपको लोगों की यादों में ही है, चाहे जिंदा रहते रहो चाहे मर के रहो। बस मेरा यही कहना था। थैंक यू वेरी मच।